ओम शांति। बाबा की कमाल है कि बाबा हर एक को चांस देता है कोई न कोई कार्य के लिए निमित्त बनने का। क्यों? क्योंकि जब कोई भी निमित्त बनता है किसी भी कार्य के लिए, उसमें खुद का बहुत सुंदर भाग्य बनता और उसमें भी खास बहुत कुछ सीखने को मिलता। तो जब बाबा कोई भी कार्य देते, यदि उस घड़ी हम दिल से हाँ करते हैं, तो वो हाँ करने में ही जैसे कि बाबा हर प्रकार की क्वालिफिकेशन भी दे देते। हम जब बाबा के पास आते हैं, मैं समझती पहले तो सबके मन में यही भावना होती है कि बस हम बाबा के पास आए हैं बाबा का प्यार लेने के लिए। तो जैसे खजाना बढ़ता जाता, अपनी प्राप्ति बढ़ती जाती, ये सोचते हैं कि जो हमें प्राप्त हुआ है अवश्य ही हम औरों के साथ बांट करके उनों को भी कुछ देवें जरूर। तो मेरे मन में भी संकल्प पहले यही रहा कि बाबा ने इतना सब कुछ दिया है, जो मेरे प्रश्न थे मन में, हर प्रकार से बाबा ने ज्ञान ऐसा सुनाया जो जल्दी में ही मैं समझती एक सप्ताह तो क्या 3-4 दिन के अंदर ही सब प्रश्न का उत्तर मिल गया। फिर जब ये संकल्प आया कि मुझे औरों के साथ भी ये शेयर करना है, जितनी मुझे बाबा की प्राप्ति हुई है औरों को भी हो, तो उस समय तो पहले था कि मुझे कुछ देना है। और जब वापस लंदन पहुंची, बाबा ने ही भेजा वापस लंदन में सेवा के लिए, तो मैंने यही सोचा कि मुझे कुछ सेवा करनी है। तो जो जो मैं कोशिश करती रही, दरवाजा बंद रहा। दरवाजे पर कितना भी खुरकाओ परंतु दरवाजा खुलता नहीं था। फिर कुछ समय के बाद ये संकल्प आया कि बाहर की सेवा तो चलो इतनी नहीं हो पाती, ये है 1969 की बात, तब तक कोई सेंटर नहीं था विदेश में। तो मैं अपने लौकिक पेरेंट्स के पास ही घर पे गई थी। तो माताजी तो ज्ञान में ही थी बहुत समय से। तो जब मैंने ये सोचा कि मुझे अभी अपना कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए, बाहर की सेवा नहीं हो पा रही तो स्व सेवा करें, तो स्व सेवा करने में मैंने अपने लिए कुछ तपस्या का प्रोग्राम बनाया, बहुत अच्छी तरह से टाइम टेबल बना करके वो मैं ध्यान रखती गई, अपना प्रोग्राम बनाती गई तपस्या का। फिर उसके बाद धीरे धीरे सेवा का पाठ भी खुलता गया, दरवाजे खुलते गए। तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही महसूस हुआ कि जब तक मुझे ये संकल्प था कि मुझे कुछ करना है, तब तक कुछ हो नहीं पा रहा था। जिस घड़ी मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे वश की बात नहीं है, हाँ मुझे अपने आप को तैयार रखना है, परंतु जबकि बाबा को कुछ कराना है तो बाबा फिर निमित्त बनाते हैं, और उस घड़ी फिर हम निमित्त बन करके उस निमित्त भाव से सेवा करते, तो सेवा भी बहुत अच्छी चलती, परंतु उसमें हम कोई भी कारण से अटक नहीं जाते। तो ये मुझे प्रैक्टिकल बहुत जबरदस्त लेसन सीखने को मिला कि जब तक स्वयं का संकल्प छोड़ा नहीं है और जब तक आंतरिक अपनी तपस्या की स्थिति तैयार नहीं की है, तब तक हम सेवा के लिए योग्य नहीं हो सकते। परंतु दोनों बातें करने से, एक तो आंतरिक ये संकल्प छोड़ दें, हाँ अपने को तैयार करके रखें, परंतु साथ साथ फिर अपनी तपस्या पर अच्छी तरह से ध्यान देवें। आज भी बाबा ने ये बहुत अच्छी बात कही कि एक तरफ है बाहर की सेवा और दूसरी तरफ है स्व के लिए अपनी खुद की सेवा। तो जब हम खुद की सेवा अथवा तपस्या पर इतना ध्यान देते तो फिर आंतरिक वो शक्ति रहती जिसमें फिर सेवा सहज हो सकती। तो निमित्त बनने के लिए मुझे ये दो बातें खास ध्यान पर रहती है कि कोई भी कार्य हो बाबा का, ये हम बहुत पक्की अपने पास बुद्धि में बात याद रखें कि हम किसके बुद्धि को टच नहीं कर सकते। आप सोचो कि कोई भी भक्ति वाला व्यक्ति हो या भक्ति वाला ना भी हो, साइंस वाला हो, कुछ भी बैकग्राउंड वाला हो, हम उनको इतनी जो बाबा की बहुत बहुत गहरी बातें हैं उनको कैसे हम कन्विंस कर सकते। हम नहीं कन्विंस कर सकते। एक तरफ शास्त्रों की बातें, उन सब की निराली बात है बाबा का ज्ञान, और फिर दूसरी तरफ जो साइंस स्टडी करने वाले हैं जिनको भक्ति भावना भी नहीं है, तो उनों के अंदर वो इतना साइंस का सब कुछ भरा हुआ है, उनों के पास ऐसे ऐसे बातें हैं जो हम उनों को उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो यदि हम ये संकल्प रखें हमें उनों को समझाना है तो हो नहीं पाता, परंतु उस आत्मा की तकदीर, उसका पाठ और फिर बाबा का कार्य और बाबा को उस आत्मा को टच करना है तो बाबा खुद ही उस आत्मा को टच करके उनके द्वारा सब कुछ जो कुछ करना है बाबा करा लेते। तो निमित्त बनने के लिए हम ये बिल्कुल पक्का संकल्प रखें कि जो भी कुछ हम करने चाहें बाबा को सामने रखें, बाबा ही करेगा, बाबा ही कराएगा, और उसमें से मैं का संकल्प नहीं आ सकता। क्योंकि आप सोचो कि जब हम कहते हैं ये भी शब्द मेरा स्टूडेंट, आपने देखा होगा दादियां कभी भी ये शब्द नहीं कहती है मेरा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि दादी जानते हैं, हर दादी, सब दादियां जानते हैं कि वो है टीचर और हम सब उसी के ही स्टूडेंट है। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये मेरा स्टूडेंट है। तो आप सोचो कि इतना बुद्धि में, जैसे आज भी बाबा ने कहा, मैंपन इतना डीपली रूटेड, इतना आत्मा के अंदर गहराई से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि आधा कल्प से ये बात चलती आ रही है। तो आधा कल्प जो बात चलती है उसको एक दिन में आप सोचो बस चले जाए, नहीं, इतना गहराई से सोच करके, समझ करके, उस बात पर ध्यान दे करके। बाबा जैसे कहते हैं ना कि चेकिंग हमें कब करनी है, हर रोज रात्रि को चेकिंग करनी है। कौन समझता है कि हर रोज रात्रि को हमें चेकिंग करनी है? अच्छा, और दिन भर क्या करेंगे? चेकिंग नहीं करेंगे। बाबा ने तो बहुत अच्छी बात कही है कि जो संकल्प आपका चल रहा, आप एक एक संकल्प को चेक करते चलो। क्यों? क्योंकि एक संकल्प है नीचे लाने का और एक संकल्प है ऊपर चढ़ती कला में ले जाने का। और यदि एक संकल्प मैंपन का आया, वो आपको नीचे इतना गिरा लेगा जो फिर रात्रि तक तो पता नहीं क्या क्या हो गया होगा, और रात्रि तक तो याद भी नहीं रहता है कि दिन भर क्या क्या चला। परंतु थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले ही उस बात पर सोचे कि ये मुझे सोचना योग्य है। जिस तरह से बोलने से पहले हमें जरूर ये सोचना होता है कि ये मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, और यदि जल्दी में बोल दिया फिर तो मुख से तीर निकल गया और दूसरी आत्मा को घायल कर दिया, फिर तो वो वापस नहीं आ सकता। इसी तरह से न सिर्फ बोलने से पहले सोचे परंतु सोचने से पहले भी सोचे। तो जब इतनी अपने पास वो चेकिंग का ध्यान रहेगा तो फिर हमारी स्थिति अथवा हमारी स्मृति ऐसे रहेंगी जिसमें हम सदा चढ़ती कला में चलते रहेंगे। तो निमित्तपन का जो भाव होता तो उसमें बहुत अपनी सेफ्टी होती। आप सोचो कि यदि मैंने कुछ किया तो थोड़ा बहुत किया तो उसमें हम खुश हो गए, तो फिर तो हम वहीं बैठ जाएंगे, अलबेले हो जाएंगे और आगे का पुरुषार्थ इतना नहीं हो पाएगा। और यदि इतना अच्छा नहीं हुआ तो भी फिर उसका मन में बहुत भारीपन आ जाएगा, दुख आ जाएगा। परंतु यदि हमने सच्ची दिल से निमित्त बनकर के कुछ भी कार्य किया तो उसमें रिजल्ट के लिए हमको सोचने की जरूरत नहीं है। जितना हम उम्मीद रखते थे उतना नहीं हो पाया, ठीक है, ड्रामा अनुसार जिसका भाग्य था वो आए, उन्होंने प्राप्ति की, वो उतना ही लेके गए। हमने कुछ कमी नहीं रखी अपने सच्चे पुरुषार्थ में, हर प्रकार से हमने ठीक ध्यान रखा। और यदि बहुत कुछ हो गया तो भी हम उसमें अहंकार में नहीं आएंगे कि देखो इतना सब कुछ हुआ। तो एक तो जो नहीं तो फ्लक्चुएशन होता, कभी ऊपर कभी नीचे की स्थिति, हम उसमें घूमते रहते हैं। तो यदि समय अनुसार अब तक भी हम इस तरह से घूमते रहेंगे, अपनी अचल अडोल स्थिर स्थिति कब होंगी? संगम युग के दिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अभी समय नहीं चलने वाला है। कई प्रकार के इशारे मिलते ही रहते हैं, चाहे यज्ञ में चाहे बाहर में भी। बाहर की हालतें भी आप देखो कि नाजुक ही कहेंगे। जो पहले 5 साल पहले बातें थी, अभी उससे बहुत बहुत नाजुक स्थिति संसार की बन गई है। तो 5 साल तो क्या मैं कहेंगी, पिछले साल की भी बातें अलग थी, इस वर्ष की बातें बिल्कुल अलग है। तो यदि हम अपने को निमित्त मानते हैं तो फिर एक एकरस स्थिति हम अपनी बना के रख सकते हैं। उसमें ऊपर नीचे की स्थिति की बात नहीं होती। हाँ, मन एकरस स्थिति में है तो फिर सदा ही हम आगे बढ़ते ही रहेंगे और कोई बात हो हम हिलेंगे नहीं। तो निमित्तपन का तो मुझे प्रैक्टिकल अनुभव है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य भी है, परंतु इतना हमें अपनी स्थिति को संभाल करके भी रखना होता। और फिर नम्रता, नम्रचित। ज्ञान मार्ग में एक बहुत अच्छी बात यह है कि बाबा न सिर्फ हमें कोई बात समझाते हैं परंतु प्रैक्टिकल हमारे जीवन में बाबा एग्जाम्पल्स रखते हैं। दादियों को बाबा ने एक बार कहा था कि आप लोगों की विशेषता ये है कि आप गुणों का दान देते हो। तो गुणों का दान कैसे दिया जाता? वो कोई वस्तु नहीं है जो हाथ में उठा करके जैसे टोली दी जाए ऐसे दी जाए, परंतु प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। कहते हैं कि बच्चों को कैसे सिखाया जाता, इंग्लिश का ये शब्द है परंतु आप समझ जाएंगे। कहते हैं वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट। मीन्स बच्चों को यदि गुणवान बनाना हो तो जो आप कार्य कर रहे हैं आपको देख करके उनको सीखने को मिलेगा। आप उनको बैठ करके सिखाने चाहेंगे कि आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, वो शायद समझे शायद ना भी समझे। तो बाबा भी हर प्रकार से बहुत सुप्रीम साइकोलॉजिस्ट है, तो बाबा ने भी पहले ब्रह्मा बाबा के द्वारा हर बात करके दिखाया और करके दिखाने से ही हम बहुत कुछ सीखे। इसी प्रकार से दादियों को भी बाबा ने ऐसे गुणवान बनाया जो वो प्रैक्टिकल अपने जीवन से करके दिखाते, तो फिर उसमें हम भी उनके साथ जब देखते हैं तो हमें भी वो गुणवान बनना सीखना होता। और नम्रता में मैं ये मानती हूँ कि जितना महान व्यक्ति उतनी उसकी नम्रता का स्वरूप। और यदि नम्रता का स्वरूप नहीं है वो बेशक कितना भी अपने को बड़ा माने परंतु विश्व उसको उस दृष्टि से नहीं देख सकता। ब्रह्मा बाबा को नस्र कहानियां, परंतु एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताती हूँ। जब हम आते थे तो मैं तो उस समय शायद 16 साल की थी, तो सर्दियों मॉनसून के दिन थे, तो थोड़ी ठंडक की हवा होती थी, और आजकल तो मॉनसून का कोई भरोसा ही नहीं। उस समय तो रेगुलर मॉनसून आते ही थे और जबरदस्त आते थे आबू में। जिस घड़ी मॉनसून जाते थे तो ऊपर पहाड़ पर तो बिल्कुल फॉगी ऐसे बन जाती थी जैसे कि सूक्ष्म वतन छाई हुई है। तो ऐसा मौसम था, तो बहुत बड़ा संगठन नहीं था बाबा के सामने। बरसात के दिनों में तो मैं समझती 40-50 ही छोटे हॉल में हम बैठते थे। 30 थे मधुबन निवासी, अभी आप सोचो कितने मधुबन निवासी होंगे, 1000 परमानेंट सेवाधारी अलग, अभी तो 10,000 सेवाधारी गुजरात के होंगे मैं समझती, परंतु उस समय तो 30 बस, 30 मधुबन निवासी और बाकी 10-12 हम बाहर से आए हुए थे, मेहमान थे। तो रात्रि के समय बाबा ने मुरली चलाई। मुरली के बाद बाबा को एक संकल्प आया और बाबा ने क्लास में ढूंढा भोली दादी को। नामी था भोली दादी, भोली, इतनी इनोसेंट भोली भंडारी, बहुत मीठी, कभी भी किसी को ना किसी बात में नहीं करती थी। किसी भी टाइम पर आप उसके पास जाओ, कुछ भी कहो, मुस्कुरा करके जरूर जरूर, ऐसे ही करके, क्यों नहीं ऐसे ही करके, जो कुछ चाहिए वो तैयार करके देती थी। तो उस दिन सामने बैठी थी तो बाबा ने उसको ढूंढा और दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। तो बाबा ने उसको बोला कि कल सवेरे क्लास के बाद जो टोली मिलती है उसमें सबको गरम गरम लापसी खिलाएं, ठंडी का मौसम आ गया। तो उसने मुस्कराया, हाँ ना कुछ नहीं कहा, तो बाबा उस बात को समझ गए। फिर बाबा कहता है वो अनाज तैयार है, तो वो फिर मुस्कराए। किसको आदत नहीं थी बाबा को ना कहने की, बाबा को कैसे ना करेंगे, तो था भी नहीं, वो भी बाबा समझ गए, परंतु ना उसके मुख से नहीं निकलता था। तो बाबा समझ गए कि अनाज वो तैयार नहीं है। तो बाबा ने उसको कहा, अच्छा ठीक है बच्ची, तुम बोरी बाहर निकाल के रखना क्लास के बाद, अभी तो फिर बाबा देखते हैं। तो तब तक तो रात्रि का क्लास शुरू होता था 9 बजे, फिनिश होता था 9:45-10 बजे। अभी रात्रि को कौन सोचेगा कि अनाज साफ करें और जाकर उसको ठीक कराएं, उसको पिसाएं, परंतु बाबा का संकल्प था। और जैसे बाबा ने कहा कोई भी श्रेष्ठ शुभ संकल्प है बाबा जरूर पूरी करते हैं। तो जब तक हम बाहर जाएं, जहां आजकल तो ऑफिसेस है, वहां ऑफिसेस नहीं थे, जहां रेलवे का टिकट होता है ना ऊपर में पांडव भवन में, तो वहां ऑफिसेस नहीं थे, वरांडा था। तो वरांडा में वो अनाज की बोरी रखी थी और थालियां रखी थी। तो बाबा एक थाली लेकर के उसमें कुछ अनाज लेकर के साफ करने लगे। तो हम लोग सब पीछे पीछे आए थे बाबा के पास के साथ, तो कोई बाबा को अकेला थोड़ी करने देगा। तो किसी ने थाली ले ली, बाबा ने दूसरी थाली उठाई, वो थाली दूसरी ने ले ली, तीसरी चौथी, ऐसे 5 लोगों ने थालियां ले ली और 15 मिनट के अंदर अनाज साफ हो गया। और जाकर के फिर उसको पिसवाया, अपने घर में ही था वो पीसने का, और फिर सवेरे सवेरे सबको गरम गरम लापसी मिली। आप सोचो कि इतना महान शिव बाबा का रथ, भाग्यशाली रथ, प्रजा का पिता, ब्रह्मा बाबा, आदि देव, कितने भी टाइटल्स आप दियो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ह्यूमैनिटी, कुछ भी टाइटल दियो, और वो बाबा अपने बच्चों को सिर्फ कुछ गरम गरम लापसी खिलाने के लिए इतना प्यार से बैठ करके अनाज साफ करे, ये है बाबा की कमाल। बाबा ने कर बाबा ने करके दिखाया कि कैसे बाबा अपने बच्चों की हर प्रकार से ध्यान रख करके इतना बच्चों को खुश करने चाहते हैं। तो बाबा से तो उस घड़ी नम्रता का भाव हम देखते थे कि किस प्रकार से बाबा अपना कुछ भी अहंकार नहीं रखते थे। तब तक हिस्ट्री हॉल भी बन गया था जब तक मैं मधुबन में आऊं, और बाजू के कमरे भी बहुत अच्छे बन गए थे। और एक तरफ पहले तो मम्मा रहती थी, फिर मम्मा के जाने के बाद बड़ी दादी भी रहती थी वहाँ, परंतु और दादी गुलजार भी दूसरी तरफ रहती थी। तो जब ये सब कुछ बना तो बाबा को कहा सभी ने, बाबा आप वहाँ रहें, और बाबा ने कहा नहीं, ये बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए हैं। तो बाबा कहाँ रहते थे, जहाँ अभी हम तपस्या करने के लिए जाते हैं, परंतु वो भी अभी बड़ा कमरा है। बाबा जब थे तो इतना छोटा कमरा था, जहाँ वो कुर्सी आती है ना, जहाँ बहन बैठती है, बस इतना तक कमरा था। और बाबा के कमरे में क्या था, सेम खटिया जो आज तक भी वहाँ दरवाजे के बाजू में है, गद्दी, वो सेम गद्दी, और जहाँ वो दीवार था, जहाँ वो बहन का कुर्सी है, वो दीवार था और बीच में दरवाजा था। तो वहाँ पर एक छोटा सा टेबल था और दो कुर्सी थे, और वहाँ मनमोहिनी दीदी और बाबा भोजन करते थे। और जहाँ गद्दी है, बाबा के गद्दी के बाजू में एक छोटा सा टेबल था गद्दी के हिसाब से नीचे, और वहाँ पर क्या था, बाबा कहता था कि ये मेरा थर्मामीटर है। थर्मामीटर किस प्रकार से था बाबा का, बहुत बड़ा थर्मामीटर था, इतना सा बड़ा था। वो कौन क्या चीज थी, वो थी रेडियो, जिस रेडियो पर बाबा हर रोज सवेरे 6 बजे 3 मिनट के लिए संसार का समाचार सुनते थे। क्यों बाबा कहते थे ये है थर्मोमीटर, क्योंकि बाबा कहते थे जब संसार समाचार ये आता कि हाँ कुछ संसार में हो रहा है, तो बाबा को पता चलता था कि बच्चों का टेम्परेचर योग का कहाँ तक है। और जब संसार ठंडा ठंडा होता था तब फिर बाबा को लगता था कि बच्चों का टेम्परेचर थोड़ा योग की भट्टी का थोड़ा कम हो गया है। तो बाबा कहते थे ये बाबा का थर्मोमीटर है। और बाबा के कमरे में और एक भी चीज आपको नहीं मिल सकती थी, कोई डेकोरेशन पीस हो, कोई और कुछ पीस हो, बाबा कहे बस बाबा को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये था बाबा के कमरे का फर्नीचर। ट्रांसलाइट तो बहुत बाद में आए, परंतु उस समय इतना। तो नहीं तो आजकल लोग समझते हैं कि मेरा घर बड़ा हो, मेरा सब कुछ ऐसा हो तो लोगों को पता चले कि मेरा पोजीशन क्या है संसार में। और बाबा इतना नम्रचित, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ जो कुछ है वो बाबा के बच्चों के लिए है। और न सिर्फ सिंप्लिसिटी परंतु त्याग वृत्ति। उसमें आप सोचो कि कितनी सर्दी होती थी आबू में उन दिनों में, और दीवार, वो जो ओरिजिनल कॉटेज है जहाँ बाबा की ऑफिस और बाबा का कमरा, वो पहले क्या था, घोड़ों को रखने का स्थान, स्टेबल्स, उसको थंबा कहते हैं क्या कहते हैं, मतलब घोड़े जहाँ रखते हैं, वो घोड़े के रखने का स्थान था। तो बस उनकी दीवार कितनी पतली होंगी, मकान आज जो बनते हैं, जो ईंटें हो चाहे वो जितना कुछ भी हो, कम से कम इतना तो होगा। पुराने जमाने में तो इतना बनाते थे, अभी तो चलो इतना बनाते हैं, परंतु घोड़ों को संभालने के लिए तो बिल्कुल कागज जितना पतला सा होता। तो ऐसे जगह पर, और बाबा हिलते नहीं थे, बाबा ने उसी स्थान को अपना स्थान, तपस्या का स्थान बना करके रखा। और फिर जो दादियां, मैं बड़ी दादी की एक कहानी सुनाती हूँ। हम लोग मीटिंग में बैठे थे, कुछ विदेश के प्रोग्राम्स के संबंध से कुछ बातें चल रही थी। दादियां बैठी है, हम लोग कुछ छोटे छोटे बैठे थे जो अपने प्लान्स हम लेके आए थे, और कुछ और भी बड़े बैठे थे बुसरत भाई। तो दादी चेयर कर रही थी मीटिंग को, और दादी ने हम लोगों के तरफ से कुछ बात सामने रखी। तो एक व्यक्ति था उस ग्रुप में जिसको बिल्कुल पसंद नहीं आई बात, तो उन्होंने बहुत बोला बहुत बोला। सभी शांत हो गए और सभी दादी की तरफ देखने लगे कि अभी दादी क्या करेंगी। दादी के चेहरे पर बिल्कुल कुछ नहीं नजर आया, बिल्कुल नम्रता से दादी सुनती रही सुनती रही। फिर आखिर वो चुप हुआ। फिर दादी ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी इस बात को अभी हाल फिलहाल छोड़ देते हैं, दूसरे टॉपिक को उठाते हैं। दूसरे टॉपिक को उठाया और फिर यहाँ 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 औरों के पूछने के बजाय दादी फिर भी उसी व्यक्ति से पूछा कि आपका क्या विचार है। आप सोचो कि हम लोग अंदर तो घबरा जाते, फिर तो उसके उस व्यक्ति के साथ तो पता नहीं बात करते या न भी करते, या करते भी तो कुछ समय के बाद सोच सोच के करते। परंतु दादी ने मन में 1% उसका कुछ नहीं रख करके इतनी नम्रता भाव से इतना प्यार से फिर भी उसी को ही बोला, आप अपना विचार सुनाए। हम तो थोड़ा शायद डर भी जाते, परंतु दादी की नम्रता, और दादी ने उसी को ही बोला। और फिर मैंने देखा कि रिस्पॉन्स क्या मिला, क्योंकि दादी ने फिर जैसे कि हाथ बढ़ाया, वो आत्मा फिर नजदीक आ गई। और फिर सेकंड उत्तर जो उन्होंने दिया, बहुत शांति से उसने भी ध्यान से दिया। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब हमारे सामने ऐसे होते हैं तो सीखने के लिए बहुत सहज हो जाता। तभी मैंने कहा कि जो मूल्य है गुण है वो कोई बैठ करके सबक नहीं सिखाया जाता, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में देख करके वो हम धारण कर सकते हैं। इसको कहा जाता है गुणों का दान। उसमें भी आप देखो कि कई यहाँ होंगे जो दादियों की बाबा की पालना लेने वाले तो कुछ भाग्यशाली कम ही है, परंतु दादियों की पालना तो मैं समझती कईयों ने ली होंगी इस सभा में। तो जिस जिस दादी के साथ आपका संपर्क रहा है, जो उन्होंने मम्मा बाबा से सीखे, आप उन बातों को दोहराओ। एक बारी हमने दादी जानकी से पूछा कि आपको ये 40 वर्ष पहले 70 वर्ष पहले की बातें कैसे याद है। कहती है कि मैं अपने बुद्धि में वो बात याद रखती हूँ जो मेरे काम की बात हो। आप लोग पता नहीं क्या क्या बातें रखते हो, जो काम की नई बात है वो भी आप लोग यहाँ जगह दे देते हो, तो फिर जो अच्छी अच्छी बातें वो खिसक जाती है। और मैं कभी फालतू बातें यहाँ जगह नहीं देती हूँ, जो काम की चीज है मेरे लिए फायदे की चीज है वो बात मैं यहाँ रखती हूँ। तो इस कारण से दादी कहती है वो जो अच्छी बातें मुझे सीखने को मिली है मैं उन बातों को बुद्धि में दोहराती रहती हूँ। तो दादी जानकी की भी एक बात मैं सुनाती हूँ। एक बार शुरू शुरू में एक बहन आती थी सेंटर पर, और उसका पति सहयोगी था, और परंतु उसको मन में थोड़ा सा डर रहता था कि कभी ऐसे ना हो जाए कि ये बहन वहाँ ही जाकर के रह जाए और मुझे छोड़ देवे। तो किसके मन में डर होता, तो आप शब्दों से उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो एक दिन था जो बाय चांस दादी ने बहुत अच्छी कहानी शुरू कर दी, तो कहानी सुनते सुनते कुछ घंटे बीत गए। तो फिर कुछ समय के बाद फोन आता, और छोटा सा ही कमरा था जहाँ दादी ने भी कार्य लंदन में शुरू किया, तो हम 5-6 लोग ही बैठे होंगे, तो जो भाई वो फोन पर बात कर रहा था दादी के साथ, इतना वो तेज बात कर रहा था, जो दादी यहाँ बैठी है फोन पकड़ के और मैं यहाँ बैठी हूँ और क्या बोल रहा है पता नहीं चलता था, परंतु तेज बोल रहा है, इतना तेज बोल रहा है जो दादी अपने कान पर वो नहीं रख रही है, ऐसे करके सुन रही है और वो आवाज हमारे तक भी आ रहा कि तेज कोई बोल रहा। तो दादी 10-15 मिनट वो बोलता जाए दादी सुनती रहे। फिर लास्ट में दादी फिर भी बहुत मीठे प्यार से गए, भाई मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। फिर फोन रखा और दादी ने उस बहन को सिर्फ ये कहा कि अभी तो तुमको बिल्कुल भागना चाहिए, अभी बहुत देर हो गई है, परंतु तुम ये टोली लेके जाओ उसके लिए। उस समय तो टोली दे दी। दूसरे दिन संडे था, तो संडे दिन विशेष वैसे भोग भी बनता है, वहाँ पर सब दूर दूर से भी आती हैं, तो दादी ने खास उसको खुद ही जा करके पैक करके उसको दिया टोली कुछ भोग वगैरह। दादी ने कहा कि मैं उसके मन से भुलानी चाहती हूँ कि उसने कल क्या कहा, उसके मन में रह जाएंगी बात, मेरे मन से तो कोई बात नहीं है, मैं तो उस बात को समझ गई, कोई मुझे हर्जा नहीं है, परंतु मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके मन में ये बात रह जाए, नहीं उसके मन से भी बात मिट जाए, नहीं तो उसको आने में संकोच होगा। तो दादी ने फिर भी नेक्स्ट डे ऐसे प्यार से उसके लिए पैक करके भेजा। तो फिर थोड़े दिनों के बाद वो वापस बाबा के घर आए। तो आप सोचो कि इतनी नम्रता, जो ये संकल्प न रखे कि उस भाई ने तो गलती की है, उसको माफी मांगनी चाहिए, इतना मैं भी भुला लूं और मैं भी उसके उसके मन से भी वो भूल को मिटा लूं, जो वो भी फिर नए सिर अपना पुरुषार्थ अच्छी तरह से करे, अथवा वो भी अपने संबंध को बना करके रखे। आप सोचो कि हम कभी सोचते हैं कि गलती तो उसकी थी ना, उसको तो आगे बढ़ना चाहिए ना, उसको कुछ कहना चाहिए ना, नहीं, नम्रता वो चीज है जो दूसरे व्यक्ति को भी उसकी भूल भूल जाए, हम ऐसे उसके प्रति व्यवहार करें। तो मैं देखती हूँ कि हर बात में सीखने को मिलता प्रैक्टिकल लाइफ से, और जब नम्रता भावना होती तो फिर उसमें बहुत सरलता भी होती। आज बाबा सरलता के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहे, परंतु जहाँ अहंकार होता वहाँ सरलता नहीं आ सकती। जो सहज स्वभाव से हम मिलनसार होकर के चल सके, अहंकार में अनेक दीवारें आ जाती, तो फिर वो दीवारों को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, परंतु हमने अपनी आत्मस्मृति से, भाई भाई की दृष्टि से, हमने बाबा के गुणगान करते, बाबा कितना महान है वो बात याद करके हमने अपने में नम्रता धारण की, तो फिर बहुत सरलता से सबके साथ व्यवहार, सबके साथ संबंध, तो फिर हर बात बहुत सहज हो जाती, सबका सहयोग भी बहुत स्नेह से मिल जाता। एक शब्द हम कहते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर, जैसे आज भी बाबा ने कहा, जो दिमाग में बात हो, जो बुद्धि में बात हो, वो बोल में भी हो, वो कर्म में भी हो, बिल्कुल उसका सीधा कनेक्शन चलता रहे, उसको कहेंगे सरलता। तो जब अंदर में कोई प्रकार का भी अभिमान होता, चाहे वो सूक्ष्म क्यों न हो, परंतु उसमें फिर रुकावटें आती जाती हैं। कभी कभी हम चाहते बहुत कुछ है, कई बातें, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, परंतु वो हो नहीं पाता। तो एक वो ना होने का कारण क्या है, वो कभी हम थोड़ा गहराई से बैठ के देखें अथवा सोचें कि किस कारण से ये श्रेष्ठ संकल्प हमारा नहीं हो रहा है। तो मैंने देखा है कि कभी कभी ये जो थोड़ा अहंकार की निशानी होती है मैंपन, बाबा ने देह अभिमान की निशानी के लिए एक बारी बहुत सिंपल बात कही थी। बाबा ने कहा था कि जब सूक्ष्म भी देह अभिमान है तो सूक्ष्म देह अभिमान स्थिति में ये जरूर आएगा जो हम सोचेंगे कि मैं राइट हूं। मैं पर भिन्न भिन्न प्रकार से आता, परंतु जब ये आता है बुद्धि में कि मैं राइट हूं, मतलब दूसरा व्यक्ति रॉन्ग है, हो सकता है कि अनेक विचार भी राइट हो सकते, सिर्फ ये विचार राइट है ऐसे भी बात नहीं है। एक बारी जब हम सर्विस मीटिंग कर रहे थे तो कुछ 5-6 बैठे थे, तो उसमें भिन्न भिन्न विचार आ रहे थे लोगों को कि ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे, तो वो बात नहीं बन पा रही थी। तो कुछ समय के बाद मैंने उनको कहा कि अच्छा अभी यहाँ तक बात छोड़ते हैं, फिर अभी हम थोड़ा अभी योग करेंगे, फिर कल सवेरे क्लास के बाद फिर हम मिलेंगे, फिर देखेंगे कि आगे कैसे चलना है। ऐसे ही किया। फिर दूसरे दिन क्लास के बाद विशेष जो दो व्यक्ति जिन्हों का आपस में बहुत ऑपोजिट विचार थे, वो दोनों मेरे पास आए और दोनों ने कहा कि हम सोचते हैं कि पहले हम ये करें और फिर नेक्स्ट हम ये करें। तो मैंने कहा कि देखो, बाबा के टचिंग से आप लोगों ने एक दो की बात स्वीकार की कि बेशक पहले ये हो और फिर बाद में ये हो, तो जरूर बाबा उसमें सफलता लाएंगे। और प्रैक्टिकल ऐसे ही देखा कि बहुत अच्छी सफलता होती रही। तो हम ये कहें कि यही सिर्फ राइट है, हाँ जब नियमों की बात आती है, प्रिंसिपल्स की बात आती है, तो उसमें राइट रॉन्ग शब्द आता, परंतु जब विचारों की बात आती है, ऐसे करें या ऐसे करें, ये करें या वो करें, उसमें एक राइट है और दूसरा रॉन्ग है ये हम कह ही नहीं सकते हैं। अनेक प्रकार के तरीके होते हैं किसी को संदेश देने के लिए। मैं समझती जितने बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं इस बेहद के परिवार में, इस बेहद के हॉल में, कितनों की कहानी अनुभव आप सुनेंगे, आपको लगेगा कि एक एक को बाबा ने किस तरह से ढूंढ करके, चुन चुन करके इतना सुंदर संगठन बनाया है। दो की कहानी एक जैसे नहीं मिल सकती। जैसे एक एक आत्मा निराली है, संस्कार निराले हैं, पाठ निराला है, वैसे वो बाबा ने कैसे उसको ढूंढ करके फिर से अपने परिवार में लाया, एक एक की कहानी भी अद्भुत कहानी होंगी जरूर। तो कोई तरीके से कोई आत्मा आती, कोई तरीके से कोई दूसरी आत्मा आती, तो यदि हम सब बातों को मान करके चले, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो फिर तो आप सोचो कि परिवार में कितनी न एक प्रेम की लहर फैल जाए, इतना रिगार्ड के सूत्र में हम बांध करके चलेंगे तो कितना सुंदर वातावरण होगा। तो जब हम ये सिर्फ इस बात में अटक जाते हैं कि मैं अनुभवी हूँ, मैं जानती हूँ, मुझे मालूम है, मैं राइट हूँ, तो जो हम उसमें अटक गए, न सिर्फ हम अटक गए परंतु बाबा की सेवा भी फिर अटक जाती। तो नम्रता भाव रखने से बहुत सहज सहज बाबा का कार्य और आगे बढ़ सकता। और फिर जिसकी जो विशेषता है वो अपनी विशेषता देख करके उसमें सहयोग, छोटी सी उंगली है सहयोग की निशानी, अपनी छोटी सी उंगली देख करके हम और आगे इस तरह से बढ़ सकते हैं। तो एक तो निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव और तीसरा निर्वाण स्थिति। कभी कभी बाबा साकार मुरली में भी कहते कि बच्चे आपकी आयु कुछ भी हो, छोटी हो बड़ी हो, परंतु आप सब कौन हो? आप सब हो वानप्रस्थी। वानप्रस्थ में जाने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। मुझे याद आता कि जब मैं 60 वर्ष की हुई तो मैं विदेश में थी, तो दादी गुलजार के साथ फोन पर बात हुई, तो दादी ने कहा कि अभी तो तुम स्थूल में भी वानप्रस्थी हो गई, अभी तो तुमको हर बात से सहज सहज किनारा होता जाएगा। तो मैंने दादी को कहा कि दादी ये तो बहुत अच्छा वरदान आपने दिया। तो फिर उस समय मैं ये सोचती थी कि फिजिकल हिसाब से तो 60 वर्ष के बाद तो कहते ही हैं वानप्रस्थ, परंतु अभी और क्या छोड़ने की बात रही, मैं उस बात पर सोचने लगी। परंतु बाबा ने, जैसे ही हम बाबा के पास आए तो बाबा ने तुरंत ये कहा कि बच्चे घर चलना है, घर चलना है, वाणी से परे जाना है। तो साइलेंस का अभ्यास बाबा तब से कराते रहे। तो वानप्रस्थ अवस्था अथवा निर्वाण की स्थिति, वाणी से परे की स्थिति, आप सोचो कोई भी बात का जितना अभ्यास होता इतना वो बात सहज होती। किसी को अभ्यास नहीं होता उनको वो बात बड़ी मुश्किल लगती, और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आपने एक बारी किया, दो बारी किया, थोड़े बारी किया, आपको वो आदत पड़ जाती और आप बहुत सहज सहज कर लेंगे। चाहे कंप्यूटर चलाने की बात हो, चाहे गाड़ी चलाने की बात हो, चाहे रोटी बनाने की बात हो। पहले कोई भी रोटी बनाने की कोशिश करता तो इंडिया का नक्शा निकल आता, वो रोटी नहीं होती। परंतु ट्राई करते रहो, आदत बढ़ जाएंगी तो बिल्कुल बहुत सुंदर अच्छी रोटी बन जाएंगी। तो सिंपल बात क्यों ना हो, परंतु अभ्यास चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड बात हो उसके लिए भी अभ्यास चाहिए, तो वो सहज हो जाएगा। तो यदि हम ये सोचते हैं कि अंत मते सो हमारी गति हो, वानप्रस्थ हम वैसे ही चले जाएं, दो प्रकार की आत्माएं वापस घर जाएंगी। एक तो जो लकी स्टार्स है वो बाबा के साथ साथ उड़ करके निर्वाण की तरफ, निर्वाण धाम में उड़ के जाएंगे, और दूसरे सभी स्टार्स के मिसल नहीं जाएंगे। दूसरे कैसे जाएंगे? बाबा के साकार मुरली को याद करो, बाबा कहते मच्छरों सदृश जाएंगे। तो मुझे मच्छर होकर के जाना है या मुझे स्टार होकर के जाना है? आप सोचो, मुझे तो मच्छर होकर के नहीं जाना है, मुझे तो चमकदार स्टार होकर के जाना है। तो यदि मुझे स्टार होकर के जाना है तो मुझे अभी से वो अभ्यास करना होगा कि बिल्कुल आत्मा अभी यहां अभी शरीर में बैठी है, और अभी अभी आत्मा वाणी से बड़े अपने घर की तरफ यात्रा करे। और जितना जितना हम ये अभ्यास करेंगे तो बस एक सेकंड में चांस मिला आत्मा उड़ के अपने घर जाए। तो जितना हमारा इस देह का भान टूटा हुआ होगा उतना हर प्रकार से सब बातों से किनारा करके हम उड़ सकेंगे। यदि हमने पहले से ही ये अभ्यास बार बार नहीं किया होगा तो क्या मालूम अंत समय हमको कौन याद आएगा, कौन सी बात हमें खींचेंगी। परंतु अभी से ही वो अभ्यास हमारा बहुत काल का होगा तो बस एक सेकंड में बाबा के साथ साथ स्टार बन करके हम उड़ के चलेंगे। तो वानप्रस्थ अवस्था अथवा निर्वाण स्थिति, वाणी से पड़े की स्थिति, उसमें सिर्फ शब्दों की बात नहीं है। कई है जो बाहर से बहुत शांत शांत रहते, परंतु उनका मन बड़ा फास्ट चालू होता है। मन हमारा एक तो सीधे रास्ते पर चले और दूसरा शांति से चले, वो है अपने खुद के माइंड को ट्रेनिंग की बात। मन मना भव का मंत्र तो बाबा ने हमें कब से दिया हुआ है और वो हम सब प्रैक्टिस भी करते हैं, परंतु मन को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए कभी कभी हम भूल जाते। कभी मन यहाँ जाता, कभी वहाँ जाता, परंतु मन सदा श्रीमत अनुसार चलता रहे। जो शुरू में बात कही, सोचने से पहले हम सोचें कि इस रास्ते से मुझे अपने मन को चलाना है या नहीं। चल पड़ा तो फिर तो कुछ टाइम लग जाएगा, फिर उसको वापस लौटने में बहुत एनर्जी लगती, परंतु उसको छूटी ना दो तो फिर वहाँ पड़ी घोड़ा रुक जाए और आप फिर उसको सीधे रास्ते पर ले चलो, उसमें आपका समय और एनर्जी बहुत बच जाती। बाबा जैसे आज कह रहे थे मेहनत, मेहनत क्यों लगती? क्योंकि अंदर में संघर्ष चलता। जब संघर्ष कोई बात का होता, बहुत एनर्जी खर्च हो जाती और मेहनत लगती है और थकान हो जाती। जब संघर्ष समाप्त होता तो सहज सहज बाबा के लव में लीन होकर के चल सकते। तो संघर्ष किस बात का? मन कभी यहाँ भागता, मन कभी यहाँ भागता, फिर हम बुद्धि से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते, नहीं, उसको अच्छी राह पर चलने का हम ट्रेनिंग देवें, पहले से ही अच्छी सोचने का हम आदत डालें। हर बात में आदत का शब्द आता, मन को आदत हो गई है नेगेटिव सोचने की, मन को आदत हो गई है व्यर्थ सोचने की, या मन को आदत हो गई है कमजोर बातें सोचने की। और मन को यदि हम ज्ञान सोचने की आदत डालें, डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ने अच्छा बहुत सहज तरीका दे दिया है। हर रोज बाबा नई नई बातें मुरली में सुनाते हैं। मैं समझती कहां पर भी ऐसा सत्संग नहीं है, जहां विदेश में तो नहीं है, भारत में शायद होगा, परंतु हर रोज नई बातें सीखने को मिले और खुद मेन टीचर आकर के हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाए। तो बाबा ने ये जो सिस्टम शुरू की 80 वर्ष पहले, अभी 80 वर्ष हो गए हैं उस बात को, 80 वर्ष से बाबा हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहते हैं। तो मन मना भाव भी तब होगा जब मन को अच्छी बातें सोचने को धन देंगे। तो बाबा की बातें जो इतनी मीठी मीठी ज्ञान की बातें हैं, वो सोचते चलो, मन सहज बाबा के तरफ जाता रहे और फिर वाणी से पढ़े जाने का बहुत सहज तरीका मिल जाए। गमसान की बातें बुद्धि में घूम रही है तो फिर वो गमसान की बातों को समाप्त करके फिर आप सोचो कि हम निर्वाण स्थिति में जाए, वाणी से पढ़े जाए, बहुत कठिन होगा। या कुछ हिसाब किताब की बातें चल रही है, हिसाब किताब में हम अटक जाते, फिर उन सब बातों को अपने को आजाद करो, उड़ो, सहज नहीं। परंतु दिन भर आपने अच्छी बातें सोची हो, बाबा की बताई हुई बातें सोची हो, फिर अच्छी अच्छी बातें आपको किस तरफ ले जाएंगी? बाबा की तरफ ले जाएंगी। फिर मन को उपराम करके निर्वाण स्थिति बना करके बस घर की यात्रा करो। ड्रामा अनुसार ये भी जो सिस्टम हर मास का संगठित योग का बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया सिस्टम है, जिसमें हम एक घंटे के लिए इतना बड़ा संगठन विश्व भर में वो वाइब्रेशन शांति के फैलाए, जरूर शांति जल्दी ही आ सकती है संसार में। तो अभी दादी जी भी आने वाली हैं और हम सभी निर्वाण स्थिति का अनुभव करेंगे। बाबा की याद में वाणी से पढ़े विश्व भर को हम साइलेंस का दान देंगे। ओम शांति।